Hare Krishna. कल और परसों हम भगवान और देवता में क्या अंतर है उसका विचार कर रहा था। उस सिलसिले में आज हम श्रीमद् भागवत से कुछ चर्चा करेंगे। देवताओं का राजा कौन है? इंद्रदेव। भगवान जब वृंदावन में लीला विलास कर रहे थे तब एक दिन, उस समय कृष्ण का उम्र था 7 साल, कृष्ण ने देखा सारे ग्वाल आदमी वृंदावन में बहुत व्यस्त थे, बहुत सारे आयोजन कर रहे थे। उन्होंने नंद महाराज बहुत व्यस्त थे तो कृष्ण नंद महाराज को पूछा, पिताजी ये क्या हो रहा है, आप सब इतने व्यस्त क्यों हैं, आप सब क्या कर रहे हैं? तो नंद महाराज इतना व्यस्त थे, नंद महाराज कुछ बताए, सोचा बच्चा है क्या वो समझाए। इस सिलसिले में हमें याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण का वृंदावन लीला नर लीला है, मतलब एक साधारण मनुष्य के रूप में भगवान वहां लीला करते हैं। तो उनको लीला देखकर ऐसा मालूम होता है कि वे एक साधारण व्यक्ति है, साधारण केवल साधारण व्यक्ति ही नहीं, एक बच्चा है। तो ये जब भगवान ने जब ऐसा लीला कर रहे थे तो नंद महाराज भी सोचा कि ये तो एक बच्चा है, इसको हम क्या समझाएंगे। पर कृष्ण ने फिर पूछा, पिताजी आप सब क्या कर रहे हैं? तो नंद महाराज ने बताया, हम इंद्र का पूजा कर रहे हैं, इंद्र पूजा का आयोजन कर रहे हैं। कृष्ण ने पूछा, इंद्र पूजा करने से क्या फायदा होता है? नंद महाराज बताया, इंद्र हम सब वैश्य हैं, हम गाय पालते हैं, गाय के लिए घास और अनाज का जरूरत होता है और उसके लिए उपजने के लिए बारिश का जरूरत होता है और इंद्र का पूजा करने से बारिश होता है, तो इसलिए हम इंद्र पूजा करते हैं। कृष्ण ने तब पूछा, इंद्र का पूजा करने से ही केवल बारिश होता है? नंद महाराज कुछ सोच में लग गए। तो कृष्ण ने पूछा, पानी के समुद्र के अंदर कोई क्या इंद्र का पूजा करता है, फिर भी वहां बारिश क्यों होता है? वहां तो कोई इंद्र पूजा नहीं करते हैं और उनका तो पानी का भी जरूरत नहीं होता है। नंद महाराज और सोचने पर तब कृष्ण ने बताया, इंद्र का पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, हम ग्वाल आदमी हैं, गोपालन हमारा वृत्ति है और गोवर्धन गाय पालन के गाय के पालन करने के लिए गोवर्धन हमें बहुत सहारा देते हैं। गोवर्धन, गोवर्धन का मतलब गाय का जहां वर्धन वृद्धि होता है, वो है गोवर्धन। गोवर्धन का, गोवर्धन में जो घास है गाय वहां खाते हैं, गोवर्धन में पानी का झरना है वहां पानी पीते हैं। ऐसे कृष्ण बताने लगा गोवर्धन का महिमा कैसा है हम लोगों के लिए। तो तब कृष्ण ने बताया, चलिए इस आयोजन जो आप कर रहे हैं इंद्र की पूजा के अलावा हम गोवर्धन का पूजा करते। यद्यपि कृष्ण एक बच्चा था 7 साल के, फिर नंद महाराज और बाकी सब ग्वाल व्यक्तियों ने कृष्ण को मानते थे, बहुत स्नेह के वश, प्यार प्रीति के वश कृष्ण जो बोलते थे वही सुनते थे। तो नंद महाराज बोला ठीक है चलो, जब कृष्ण कह रहा है कि हम गोवर्धन पूजा करेंगे चलो हम गोवर्धन करेंगे। तो उन्होंने गोवर्धन का पूजा करना शुरू किया और बहुत धूमधाम से गोवर्धन का पूजा किया। तो तब इंद्र का पता चला कि उनका पूजा का जो आयोजन था उसके द्वारा ये सब वृंदावन के वृंदावन वासियों ने गोवर्धन का पूजा किया। इंद्र का बहुत गुस्सा है, इंद्र सोचा हमको कुछ शिक्षा देना चाहिए, ये अनपढ़ गांव वाले हैं, गवार हैं, ये सोचा इंद्र ने और सोचा कि इसको हम शिक्षा दें। तब इंद्र प्रलयकालीन जो बारिश देने वाला जो मेघ होता है उस मेघ को, उसके साथ झंझा और बिजली को बुलाया, बोला जाओ संवर्तक नाम का जो बाढ़ ये मेघ है उसको निर्देश दिया तुम वृंदावन को ध्वंस कर। तब उन्होंने जाकर वृंदावन में बारिश वर्षण करना शुरू किया और वैसे जब ब्रजवासी ने देखा कि ऐसे बारिश होने वाला है साथ साथ बहुत झंझा और बिजली हो रहा है, बहुत डर गए और कृष्ण के पास आकर बोला देखो कृष्ण हम अब क्या करें। कृष्ण बोला कोई चिंता मत करो मैं तुम सबको संभाल। तब श्री कृष्ण ने गिरी गोवर्धन को अपना हाथ पर उठा दिया, एक छाता की तरह गोवर्धन का धारण किया और उस गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे ब्रजवासी और सारे गाय बैल भैंस सारे प्राणियों को भी कृष्ण ने रक्षा किया। इंद्र ने 7 दिन तक ऐसे बारिश बरसाने लगा पर ब्रजवासी को कुछ नहीं हुआ। इंद्र को पता नहीं चला था, इंद्र ने बिजली को भेजा जाओ तुम जाके बोल देखो क्या हाल हुआ है ब्रजवासी। बिजली ने झट से आकर वापस चला गया इंद्र के पास, जाकर बोला वृंदावन में कोई किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है, वृंदावन में सब मर गए। तो इंद्र ने बहुत प्रसन्न हुआ पर थोड़े देर बाद झंझा ने हवा ने जाकर इंद्र को बताया ये खबर जो बिजली दिया था वो सही नहीं है, गोवर्धन पर्वत ये जो आपके पूजा के लिए जितने सारे आयोजन था वो खाकर उसका इतना तेज हो गया कि वो गगन पर उठ गया है और सारे ब्रजवासियों ने उसका नीचे आ गए और वहां पर सबको आश्रय मिल गया। तब इंद्र ने सोचा, एक तो पर्वत था मैनाक, वो उड़ता था। मैनाक एक पर्वत है जो पर्वत होते हुए भी वो उड़ता था, और उड़ते हुए कहीं कहां जाकर वो जब गिर जाता था वहां सारे कुछ नष्ट हो जाता था, ध्वंस हो जाता था। तो इसलिए इंद्र ने उसका जो पक्ष था उसको काट दिया। विंग्स को हिंदी क्या होता है?
पंखा।
उसको पंखा को काट दिया। तब से मैना उड़ नहीं सकता है। तो इंद्र ने सोचा क्या, वो फिर से आपका उसका पंखा गजाया ताकि वो उड़ सक उड़ रहा है। तो इंद्र ने बोला वज्र को जाकर तुम एकदम तोड़ दो इस पर्वत को। तो वज्र ने कितना कोशिश किया पर फिर कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसे 7 दिन बारिश बरसाने के बाद इंद्र होश में आया, सोचे ये कैसे होगा। तो ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये कृष्ण जो है ये कोई असाधारण व्यक्ति है। तब बृहस्पति ने आकर इंद्र को समझाया, इंद्र ये तुम क्या कर रहे हो। कृष्ण स्वयं भगवान है और तुम उनसे ऐसा आचरण कर रहे हो। तब इंद्र होश में आया, पर इंद्र का चिंता भी हुआ, भगवान का जरूर, ये तो मेरा प्रभु है, नारायण है। इंद्र को कृष्ण को पहचान नहीं सका, इंद्र ने कृष्ण को पहचाना नहीं, परंतु इंद्र नारायण को मानते, विष्णु को मानते। तो उसको तब होश में आया और समझ लिया कि ये कृष्ण ही नारायण है। तब इंद्र ने कृष्ण के पास जाने का ये किया, विचार किया, पर उसका मन में भय भी आया, मेरा प्रभु तो मेरा हम पर बहुत क्रोधित हो गए होंगे, तो क्या हाल होगा। तब बृहस्पति ने बताया, इंद्र तुम सुरभि को लेकर जाओ, गाय भगवान के श्री कृष्ण का बहुत प्यार है, और तुम सुरभि को लेके जाओ और सुरभि का पीछे छुप कर तुम जाना, ताकि पहले भगवान सुरभि को देखेंगे और सुरभि को देखते ही उनका गुस्सा ये हो जाएगा, और तब तुम निकाल के उनका स्तब कर। इंद्र ने वही किया था, सुरभि का पूंछ पकड़कर इंद्र ने कृष्ण के पास गया, और सुरभि ने पहले अपना दूध से कृष्ण का अभिषेक किया, और जब भगवान ने जब प्रसन्न हो गए थे तब इंद्र ने निकलकर उनका स्तब करना शुरू। भागवतम का 10वें स्कंध का 27 अध्याय में श्री कृष्ण इंद्रदेव का तथा माता सुरभि का स्तुति का वर्णन। ये हम सोचा, इसका विचार हम करेंगे, क्यों कि देवता और भगवान में क्या अंतर है वो समझेंगे। राजा इंद्र ने कहा, आपका दिव्य रूप शुद्ध सतोगुण का प्राकट्य है, ये परिवर्तन से विचलित नहीं होता, ज्ञान से चमकता रहता है और रजो तथा तमो गुण से रहित है। आपके भीतर माया तथा अज्ञान पर आश्रित भौतिक गुणों का प्रबल प्रवाह नहीं पाया जाता। रजो और तमो गुण से अतीत है श्री भगवान सत्य, शुद्ध सत्य। ये बहुत सुंदर स्तव है इंद्र का, तो हम हिंदी अनुवाद ही केवल पढ़ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर है, कुतो नु तत्वे तव ईश्वर तत्कृता लाभो दयो जे बुधलिंग भावा तथापि दंडं भगवान विभर्ति धर्मस्य गुप्तैः फल निग्रहाय। हे तो भला आप में अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण यथा लोभ काम क्रोध तथा ईर्ष्या किस तरह रह सकते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति संसार में मनुष्य के पूर्व लिप्तता के कारण होती है और ये मनुष्य को संसार में अधिकाधिक जकड़ते जाते हैं। फिर भी हे परमेश्वर, आप धर्म की रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के लिए उन्हें दंड देते हैं। आप इस संपूर्ण जगत के पिता, आध्यात्मिक गुरु और परम नियंता भी हैं। आप दुर्लंघ काल हैं जो पापियों को उन्हीं को लाभ के लिए दंड देता है। निस्संदेह स्वेच्छा से लिए जाने वाले विविध अवतारों में आप उन लोगों का मिथ्या गर्व दूर करते हैं जो अपने को इस जगत का स्वामी मान बैठते हैं। मुझ जैसे मूर्ख जन जो अपने को जगत का स्वामी मान बैठते हैं, तुरंत ही आपने मिथ्या गर्व को त्याग देते हैं और जब वे आपको काल के समक्ष भी नीडर देखते हैं तो वे तुरंत आध्यात्मिक प्रगति करने वाले भक्तों का मार्ग ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह आप दुष्टों को शिक्षा देने के लिए ही दंड देते हैं। मित्रवृंद আমার ঘরে ইয়ে আছে, দশম স্কন্ধে বইটা টেবিলের ওপরে আছে, ওটা দেখো, সাতাশ অধ্যায় থেকে প্রবলেম থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ English, Hindi, Bengali. अपने शासन शक्ति के मद में चूर एवं आपके दिव्य प्रभाव से अनजान मैंने आपका अपमान किया है। आप मुझे क्षमा करें, मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी किंतु आप मेरी चेतना को कभी इतनी अशुद्ध न होने दे। हे दिव्य प्रभु, टेक्स्ट 9, आप इस जगत में उन सेनापतियों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं जो पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं और अनेक भीषण उत्पात मचाते हैं। हे प्रभु, उसी के साथ साथ आप उन लोगों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं जो श्रद्धा पूर्वक आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। ये श्लोक छोटा है, हम पढ़ लेते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। सर्वव्यापी तथा सबों के हृदय में निवास करने वाले हैं परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार। यह जदुकुल श्रेष्ठ कृष्ण, आपको मेरा नमस्कार। अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार दिव्य शरीर धारण करने वाले शुद्ध चेतना रूप सर्वस्य समस्त वस्तुओं के बीच तथा समस्त प्राणियों के आत्मा रूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, जब मेरा यज्ञ विध्वंस हो गया तो मैं मिथ्या अहंकार के कारण बहुत क्रुद्ध हुआ। इस तरह मैंने घनघोर वर्षा तथा वायु के द्वारा आपके ग्वाल समुदाय को विनष्ट कर देना चाहा। हे प्रभु, मेरा मिथ्या अहंकार को भंग करके तथा मेरे प्रयास वृंदावन को दंडित करने का प्रयास को पराजित करके आपने मुझ पर दया दर्शाई है। अब मैं परमेश्वर गुरु तथा परमात्मा रूप आपकी शरण में आया हूं। तो ऐसे भगवान को स्तब इंद्र ने किया था। और आप देखते हैं भगवान इंद्र को क्या बताया। भगवान ने कहा, हे इंद्र, मैंने तो दयावश ही तुम्हारे निमित्त होकर होने वाले ये यज्ञ को रोक दिया था। तुम स्वर्ग के राजा के अपने ऐश्वर्य से आध्यात्मिक उन्मत्त हो चुके थे और मैं चाहता था कि तुम सदैव मेरा स्मरण कर सको। अपनी शक्ति, दिस इज टेक्स्ट 16, टेक्स्ट 16। अपनी शक्ति तथा ऐश्वर्य ने ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त मनुष्य मुझे अपने हाथ में दंड का डंडा लिए हुए अपने निकट नहीं देख पाता। यदि मैं उसका वास्तविक कल्याण चाहता हूं तो मैं उसे भौतिक सौभाग्य के पद से नीचे खींच लेता। हे इंद्र, अब तुम जा सकते हो। मेरी आज्ञा का पालन करो और स्वर्ग के राजा पद पर बने रहो, किंतु मिथ्या अभिमान से रहित होकर गंभीर बने रहे। तो भगवान इंद्र को ये उपदेश दिए। जो बड़े पद जिस व्यक्ति को मिलता है भगवान का कृपा से ही मिलता है। इंद्र स्वर्ग की राजा कैसे बना? भगवान का कृपा। तो ये स्वर्ग किसका है, किसका राज है, इसका असल अधिकार किसका है? तो ये हमें समझना चाहिए। जब भी हमें कुछ पद मिलता है, कुछ सौभाग्य मिलता है, उस गर्व में हमें गर्वित नहीं होना चाहिए, हमें दम नहीं होना चाहिए। हमें हर समय याद रखना चाहिए कि हम तो केवल परमेश्वर भगवान का सेवक, उनकी सेवा के लिए कुछ सौभाग्य मिलता है, कुछ पद मिल सकता है, परंतु कभी ये नहीं सोचना कि ये मेरा है। चाहे हम कोई भी हो, हम छोटे मोटे मामूली इंसान हो या सारे संसार के अध्यक्ष, इंद्र स्वर्गलोक का राजा हो या इस सारे ब्रह्मांड का अधीश्वर ब्रह्मा हो, किसी भी पद हमें मिले हमको हर समय याद रखना कि सब भगवान का है। चाहे ये हमारा छोटा मकान हो, ये इस पृथ्वी पर कोई राज्य हो, ये सारे पृथ्वी का संपदा मिले या स्वर्ग पे मिले या ब्रह्मांड का मिले, हमें याद रखना ये सब असल में भगवान का है। हम उनके नौकर के रूप में उसको देखभाल करने का मौका मिले। जैसे कभी कभी राजा ने कोई व्यक्ति अपना मकान का देखभाल करने के लिए अपने नौकर को देते हैं, तो नौकर क्या कभी सोचता है कि ये मेरा है? मालिक नौकर के पास चाबी रखे गए हैं, ठीक है तुम इसको देखभाल करो। मालिक का 50 मकान है जगह जगह, बहुत बड़े आदमी है, 50 जगह में 50 देशों में उनका मकान है, तो हर समय तो हर जगह नहीं रहते हैं, मकान खाली रहता है तो नौकर को देता है, तुम देखते हो। अगर नौकर सोचेगा कि वो ये मकान तो मेरा है, तब उसका हाल क्या होगा? वो क्या मालिक का कृपा मिलेगा, उसका प्रभु का कृपा मिलेगा? परंतु नौकर अगर बहुत अच्छा तरह ये प्रभु का संपत्ति समझकर उसको संभालते हैं तो प्रभु उन पर प्रसन्न होकर उनको इनाम देते हैं। वैसे ही जब हम भगवान को सेवा सही रूप से करते हैं तो भगवान हमें स्वीकृति देते हैं, इनाम देते हैं और भी बड़ा पद दे देते हैं। ओ इंद्र के रूप में तुम इच्छा इतना कुछ कर रहे हो, हम शुरू करते अपने घर से। ओ तुम इतना सुंदर रूप से मेरा घर संभाल के रखा है, ठीक है चलो एक देश तुमको मैं दे देता हूं, तुम राजा बनो। एक देश का राजा बना, तब भगवान बोला कि ये देखो कितना सुंदर रूप से मेरा राज्य का देखभाल कर रहा था, तो चलो इसको सारा पृथ्वी हम दे देते, सारा पृथ्वी का अधिकार उस पर दे देते। तो पृथ्वी का अधिकार मिल गया, वहां जब सेवा बहुत अच्छा से किया, भगवान क्या बोलेंगे, ठीक है चलो इसको हम इंद्र का पद स्वर्ग लोग दे देते हैं, उसको देखभाल करने के लिए अच्छा एक आदमी का जरूरत है, स्वर्गलोक में आप इंद्र नहीं है तो चलो उसको हम इसको इंद्र बना देते। इसके पश्चात ब्रह्मा जी का कभी अगर कुछ तबीयत खराब हुआ और कोई और ब्रह्मा का जरूरत हुआ तो भगवान बोलेंगे ठीक है चलो ये मेरा बहुत अच्छा सेवक है, इसको ब्रह्मा बना दे। तो ऐसे भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अंत में भगवान क्या वो करेंगे, भगवान बोलेंगे चलो ये तो मेरा बहुत अच्छा सेवक है, इसको मैं अपना घर बना देता हूं। तब हम भगवान के पास वापस चले जाते हैं। इसलिए भगवान का भक्त बनने में त्याग का कोई प्रबंध नहीं रहता। त्याग हम क्या करेंगे, शुरू से ही तो हम जो मेरा नहीं है तो उसको त्यागने का क्या सवाल है। अगर मेरा होता तब हम त्याग सकता था, जो मेरा नहीं है उसको त्याग का सवाल कैसे है। परंतु हमें समझना चाहिए सब कुछ भगवान का है, और भगवान कौन है, भगवान हमारे प्रभु है। तो नौकर का क्या करना चाहिए, प्रभु के लिए सेवा करना, और ये सेवा करने से प्रभु और भृत्य का जो संपर्क, ये संपर्क सुंदर रूप से संपन्न होता है, पूर्ण होता है। भक्ति का मतलब है वो, जो भक्त है उसको कुछ त्यागने का प्रयोजन नहीं होता, जो भक्त है उसको क्या करना होता है, भगवान के लिए ग्रहण करना, भगवान के लिए सब कुछ करना, मेरे प्रभु के लिए ये जरूरत है चलो हम सारा पृथ्वी को तोलपाड़ करके उसको लाकर हम हमारे प्रभु को सेवा करें। तो ये भक्त का मान, भक्ति का मतलब ये ऐसे कपट त्याग नहीं। भक्त का उसके भक्ति का विश्लेषण कैसे किया गया है, युक्त वैराग्य जो है, वैराग है परंतु कैसा वैराग है, युक्त भगवान के लिए हम ग्रहण करें। प्रापंचिका तया बुद्धा हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्याग वैराग्यम फल। इस जगत का सारे वस्तु को प्रापंचिक मतलब भौतिक समझकर अगर कोई उसको त्यागते हैं परिसंबंधी वस्तु, जिस वस्तु के द्वारा हम भगवान को सेवा कर सकते थे उसको त्यागते हैं, तो वो वैराग्य तो फल्गु का मतलब, फल्गु का मतलब जो नहीं है, असल में नहीं, फल्गु वैराग्य फल्गु। परंतु भगवान का सेवक क्या करते हैं, युक्त वैराग्य में लिप्त होते, अनासक्तस्य विषयान, अनाशक्त अनासक्त में मतलब आसक्ति रहित होकर, विषय के प्रति अनाशक्त होकर यथार्हम उपजुंजते। भगवान की सेवा के लिए जो जिसका जरूरत होता है उसको ग्रहण करता है, यथा अर्हम उपजुंजत, निर्बंध कृष्ण संबंध, भगवान के साथ संपर्क युक्त होकर, जैसे अर्जुन को भगवान के लिए लड़ाई करना पड़ा, तो लड़ाई करते अर्जुन को क्या किसको ग्रहण करना पड़ा, अस्त्र शस्त्र। तो अर्जुन क्या त्याग का ये दृष्टांत दे रहे हैं, परंतु अर्जुन ने बोला था हम लड़ाई नहीं करेंगे, मैं बैरागी बन जाऊंगा, मैं सब कुछ त्याग कर मैं जंगल में चला जाऊंगा, ये राज्य का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये राज्य हम अगर लेंगे तो अपना अपना सुहृद मित्र और अपन आदमी के खून से ये 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 राज्य शिक्त हो। तो तब भगवान क्या बताया अर्जुन को, अर्जुन को भगवान ने डांटा था, अर्जुन तुम बातें करते हो बहुत बड़े बड़े जैसे बहुत पंडित हो, परंतु असल में तुमको कुछ ज्ञान नहीं, ये कहकर भगवान अर्जुन को समझाना शुरू किया जो भगवत गीता का उपदेश था। अनाशक्तस्य विषयः, अर्जुन को कोई आशक्ति नहीं था, अर्जुन के लिए राज्य मिला या ना मिला उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 14 साल 13 साल जंगल में कटाया, बहुत अच्छा रहा है, 1 साल के लिए स्वर्गलोक में भी चले गए, परंतु जंगल में हो या स्वर्गलोक में हो अर्जुन एकदम निष्प्रिय थे, कुछ भी स्प्रिय कोई भी आशक्त नहीं है भगवान ने, क्यों, क्योंकि अर्जुन का आशक्ति केवल भगवान के चरण करने के लिए। जैसे आप लोग भगवान का भक्ति कर रहे हैं तो बाहर का कुछ ये उसमें कुछ फर्क होता है, आप बाहर का परिस्थिति में कुछ फर्क नहीं होता, भगवान का सेवा ही भगवान के प्रति आसक्ति ही आपका जीवन का उद्देश्य बनता है। तो ऐसे जब भगवत भक्ति का भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त होने का स्वाद जब मिलता है तो बाकी सब तुच्छ हो जाता है, ये है भक्ति का विशेषता। जब कोई उत्तम वस्तु का श्रेष्ठ वस्तु का स्वाद मिलता है तब निकृष्ट वस्तु का स्वाद पर आसक्ति रहता है नहीं, तो वैसे ही भगवत भक्ति का स्वाद मिलने से ये भौतिक जगत के प्रति और कोई आसक्ति नहीं। भगवान ने इंद्र को वही समझाया, देखो हे इंद्र अब तुम जा सकते हो, पर जाने का पहले इंद्र को विदा देने के पहले भगवान ने कुछ उपदेश दिया, मेरी आज्ञा का पालन करो और स्वर्ग के राज पद पर बने रहे, क्योंकि मैं तुमको इस पद दान किया, तुमको मैं इंद्र बने, नहीं तो तुम क्यों कौन, एक साधारण जीव आत्मा, इंद्र भी एक जीव आत्मा है। जैसे कोई बहुत बड़े व्यक्ति, अब जैसे सोचिए कौन, किसको बारे में सोचेंगे, कोई बड़े व्यक्ति कौन है, ओके बुश, जॉर्ज बुश, कौन है जॉर्ज बुश, जॉर्ज बुश अमेरिका का प्रेसिडेंट, परंतु असल में वो कौन है, एक साधारण जीव आत्मा है। ये शरीर के बाहर आप जॉर्ज बुश है, अमेरिका के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट है, कब तक रहेगा, चार साल के, चार साल के बाद, और बाद में क्या होगा, बुढ़ा हो जाए, बीमारी होगा और मर जाए, तो मरने के पश्चात क्या होगा कुछ पता है उसको, ऐसा हो सकता है कि एक कृमि या कीड़े बनकर उसका जन्म हो सकता है। जॉर्ज बुश एक साधारण व्यक्ति, कोई जीव या तो कोई जानवर भी बन सकता है। ऐसे प्रभुपाद जी ने एक बार बताए थे, हम नाम लेने नहीं चाहते, एक बहुत बड़े भारतीय व्यक्ति, उसको बहुत सम्मान था, बहुत बड़े आदमी थे, प्रभुपाद जी ने बताया था कि वो आप स्वीडन में एक कुत्ता का रूप में जाना गया। भारत के इतने महान व्यक्ति थे, आज तक भी काफी लोग उनको पूजा करते हैं, बल्कि प्रभुपाद जी ने बताया। तो और कैसे हो सकता है, इसका भी विचार समझाया। जब शरीर त्यागने वाला था, बहुत सारे आदमी उनको देखने के लिए आया था, और उनका घर में जो कुत्ता था, वो कुत्ता चिल्ला रहा था, इतना आदमी देख, और कुत्ता का आवाज सुनकर वो शरीर त्यागा, तो कुत्ता का कल्पना करते हुए, कुत्ता का चिंतन करते हुए शरीर त्यागा, उसके कारण उसका कुत्ता चिल्ला। तो बहुत सोच संभल कर रहना चाहिए। आशक ये देखिए, शरीर छोड़ने के समय किसका चिंतन होगा, पता है आपको, शरीर छोड़ने के समय किसका चिंतन होता है, जहां सबसे आशक्ति जहां है, जिसके प्रति उसका ही चिंतन होता है। तो अगर कोई एक जानवर को चिंता करते हुए शरीर त्यागे, कोई जानवर के प्रति आशक्ति है, तो क्या होगा, वो जानवर का शरीर होगा। जैसे आपको जड़ भरत का कहानी पता है, याद है, जड़ भरत, महाराज भरत, महाराज भरत सारा पृथ्वी का राजा था, और सब कुछ त्याग दिया भगवत भक्ति प्राप्त होने के लिए, भगवत चिंतन में मगन होने के कारण, मगन होने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सारा पृथ्वी का राज त्याग कर उन्होंने चले गए थे जंगल में, नदी के किनारे भगवान के चिंतन में लिप्त रहकर अपना दिन बिताने लगा। परंतु एक समय एक हिरण के बच्चा को, एक छोटा सा हिरण के प्रति उसका आसक्ति हो गई, और उस कारण मृत्यु के समय वो हिरण को चिंतन करते हुए शरीर किया, तो इसलिए उनका एक हिरण का शरीर। जंग जंग बापी स्मरण भावम तजत तंते करे, जिस भावना लेकर शरीर त्यागते हैं, उस भावना के अनुसार अगला शरीर को प्राप्ति होती है। तो अब बताइए, आपका आशक्ति कहां रखना चाहिए, भगवान के प्रति। जब भगवान के प्रति आशक्ति होता है, भगवान के प्रति निर्भर होता है, तो मृत्यु के समय किसका चिंतन हो? भगवान का चिंतन हो। और भगवान का चिंतन होने से, भगवान का चिंतन होने से अंतकाले अंते नारायण स्मृति, अंतकाले चमामे व स्मरण मुक्त करेगा। जो मेरा चिंतन करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं वो मेरा भाव प्राप्त होकर मेरे पास आता है, ये भगवान का ही प्रतिश्रुति है। इसलिए भगवान के प्रति ही आशक्त रहना चाहिए। परंतु आजकल क्या हो रहा है, मैं तो देखता हूं उज्जैन में भी हो रहा है, डॉग्स हैव बिकम मैन्स बेस्ट फ्रेंड। मनुष्य का सबसे प्यारे दोस्त कौन बना है आजकल? कुत्ता बना है, क्योंकि अपना आदमी तो उसको छोड़ के चला जाता है, बल्कि कुत्ता नहीं छोड़ता है। विशेष रूप से विदेश में लड़का लड़की 16-17 साल होने से बस घर छोड़कर चले जाते, पिता माता के साथ कोई संपर्क नहीं होता। पिता माता जब बुढ़ा हो जाता है, हो सकता है बहुत सारे रुपए हैं, दौलत है, परंतु देखने वाला कोई भी नहीं है, उसको ओल्ड एज होम में रहना पड़ता है। और वह नर्स अगर कुछ खाना देता है तो खाना मिलता है, अगर नर्स भूल गया तो बस चलो भूखा ही रह जाता है। ऐसा हुआ है एक आदमी को कोई दिन खाना नहीं मिला, भूल गए खाना देने को, और उसका शक्ति नहीं था उठ कर कुछ लाए, अकेला मर गया। जैसे भारत का तो हमारा संस्कृति तो अलग था पहले, पूरब में था, अब बदल रहा। पूरब में क्या होता था, घर में पिता माता थे, उनके पिता माता दादा दादी थे, दादा को वो बच्चे को साथ देखभाल दादा या दादी करते थे, और ये घर में सब इकट्ठा होकर एक साथ रहकर एक दूसरे को संभालते थे। परंतु तो आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, अब सब टूट रहा है। अब यहां भी, वहां तो 16-17 साल में घर से निकल जाते हैं और यहां शादी होने के बाद निकल जाते हैं। घर में पिता माता को देखने वाला कोई नहीं रहता। और हम जो हमारा जो परिवार है वो तो केवल एक दो आदमी का परिवार नहीं है, 100 आदमी को परिवार, 100,000 आदमी का परिवार। इसलिए यहां इस्कॉन के साथ युक्त होना ही सबसे बुद्धिमान का काम, क्योंकि तब एकदम सिक्योरिटी सिक्योर्ड रहता है। मृत्यु के समय में सब भक्त लोग मेरे चारों ओर, जब बुढ़ा हो जाएंगे तो हमको सब देखेंगे, और ऐसा एक वातावरण सृष्टि करना भी हमारा कर्तव्य है, वही हम करने का कोशिश कर रहे हैं। एक विशाल परिवार जहां एक दूसरे को परिचर्या करेंगे, सेवा करेंगे, देखभाल करेंगे, भगवान को केंद्र बनाकर हमारा ये परिवार बन रहा है।